ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
तो आज हम पाठ कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 1 और 2। आज जो है नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए नया अध्याय यहाँ पे प्रारंभ होगा। और इस अध्याय का नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, विष्णु दूतों द्वारा। तो श्लोक क्रमांक 1 मैं पढ़ता हूँ, फिर 2 हम एक ही साथ पढ़ेंगे। एक नहीं है।
श्री बादरायण उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभाषितम् उपधार्याथ तानाजन प्रात्याहुर नयको विदः।
तो इसका अनुवाद सुनिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। Where is the verse? श्लोक अरे तो आज का श्लोक, श्लोक संख्या 2।
श्री विष्णु दूता ऊचु अहो कष्टं धर्मदृशं अधर्मस्पृशते शवं यत्र दण्ड्येष्व पापेषु दण्डो ये घ्रियते वृथा।
तो इसका शब्दार्थ बोलेंगे। श्री विष्णु दूता ऊचुः, विष्णु दूतों ने कहा, अहो हाय कष्टम कितना दुखदाई है, धर्म दृशम धर्म पालन करने में रुचि लेने वाले पुरुषों को अधर्म अधर्म स्पृशते प्रभावित कर रहा है, सभाम सभा को यत्र जिसमें अदंडेशु न दंडित होने वाले पुरुषों पर, अपापेशु पाप रहित दंड दंड ये जिनके द्वारा घ्रियते निर्धारित किया जाता है, वृथा व्यर्थ ही। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभ्यचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद के अनुवाद। विष्णु दूतों ने कहा, हाय यह कितना दुखद है कि ऐसे सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए वहाँ अधर्मों को लाया जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तात्पर्य, विष्णु दूतों ने यमदूतों पर आरोप लगाया है कि वे दंड देने के लिए अजामिल को यमराज के पास घसीट कर ले जाने का प्रयास करके धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। यमराज वह अधिकारी है जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धार्मिक तथा अधार्मिक सिद्धांतों का निर्णय करने तथा अधार्मिक लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त किया है, किंतु यदि पूर्णतया निष्पाप लोग दंडित होते हैं तो यमराज की पूरी सभा दूषित होती है। यह नियम न केवल यमराज की सभा पर लागू होता है अपितु संपूर्ण मानव समाज पर भी लागू होता है। मानव समाज में धार्मिक सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करना राजन के दरबार का या सरकार का कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश इस कलियुग में धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है और सरकार यह ठीक से निर्णय नहीं ले पाती कि कौन दंडनीय है और कौन नहीं। कहा जाता है कि कलियुग में यदि न्यायालय में धन नहीं व्यय किया जाते तो न्याय नहीं मिल पाता। निस्संदेह न्यायालयों में प्रायः पाया जाता है कि अनुकूल निर्णयों के लिए मजिस्ट्रेटों को रिश्वत दी जाती है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले धार्मिक लोगों को बंदी बनाकर पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा सताया जाता है, जो संपूर्ण जनता के लाभार्थ कार्य करते हैं। विष्णुदूत जो कि वैष्णव थे, इन्हीं शोचनीय तथ्यों के लिए शोक कर रहे थे। वैष्णव जन समस्त पतित आत्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण धार्मिक सिद्धांतों की मानक विधि के अनुसार प्रचार करने बाहर जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कलियुग के प्रभाव से जिन वैष्णवों ने भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वे कभी कभी सताए जाते हैं और शांति भंग करने के झूठे आरोप पर न्यायालयों द्वारा दंडित किए जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी लोग एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन भगवत सत्संग में। और आप सभी से निवेदन है, वृंदावन धामवासी वरिष्ठ भक्तगण, हमें आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम कुछ बोल सके। आप तो धामवासी है लेकिन हमारा बास तो अलग है। तो यहाँ पे ऐसे अवसर प्राप्त हुआ है वृंदावन धाम में, ऐसे विशेष तिथि पे, हमें तो पता नहीं था आज विशेष तिथि है बोल के। और हम आए थे और कुछ उद्देश्य से आए थे, कल हम आए वृंदावन धाम और कुछ लक्ष्य था यहाँ आना। लेकिन कल दोपहर को मिले धर्मात्मा प्रभु, तो बोले आप कुछ सेवा कीजिए, तो फिर लक्ष्य बदल गया। हाँ, तो हमारा लक्ष्य जो है कृष्ण भावना भावित हो गया, तो ये अवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसे विशेष दिन पे, बहुत ही विशेष दिन है आज, वेरी वेरी स्पेशल डे। आज सुबह ही पता चला मुझे ऐसे विशेष तिथि आया बोल के, प्रभु जी आके बोले। तो आपने सुना ही है, आज जो है श्री बलराम रास यात्रा है, साथ साथ कृष्ण बसंत रास यात्रा भी है। और हमारे आचार्य श्यामानंद प्रभु और बंसी वदन ठाकुर, इनका भी आविर्भाव दिवस है। तो अभी आधा घंटा में ये सब भी चर्चा करना है, साथ साथ श्रीमद् भागवतम भी चर्चा करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, कम समय में ज़्यादा बोलना, ये सबसे बड़ा चुनौती है। फिर भी आप प्रयास करते हैं, भगवान की लीला तो अनंत है, यथाशक्ति प्रयास करेंगे, कुछ ग्लिम्स हाईलाइट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे विशेष तिथि पे हम भगवान कृष्ण के रासलीला के बारे में तो सुनते ही है, समय भी अभाव है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बलराम जी के बारे में थोड़ा दो पाँच मिनट। और यहाँ पे हमारे पास तो कृष्ण बलराम है ही, कृष्ण बलराम उनके बारे में चर्चा करना तो बहुत उचित है। यहाँ बहुत उचित है वृंदावन धाम में रमण रीति में, कृष्ण बलराम के क्षेत्र में, ये उनका क्षेत्र है, कृष्ण बलराम का क्षेत्र है ये, और है ही कृष्ण बलराम। तो बलराम रास यात्रा, बलराम जी आप सभी लोग जानते हैं। बलराम जी इस भजन में भी बोल रहे थे, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। किनके नंदन है? रोहिणी नंदन। हाँ, रोहिणी नंदन, देवकी नंदन भी बोल सकते हैं आप बलराम जी को। और देवकी नंदन भी है, रोहिणी नंदन भी है। स्थानांतरित किया गया है उनको। तो बलराम जी की लीलाएं भी अद्भुत है। जय राम घाट जय, भगवान कृष्ण जब रासलीला करते हैं तो वहाँ पे बलराम जी कभी नहीं जाते हैं, कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं छोटे भाई के रासलीला में। तो इसीलिए बलराम जी की गोपियाँ अलग है रासलीला के लिए, भगवान कृष्ण की गोपियाँ अलग है और बलराम जी की गोपियाँ भी अलग है, उनकी गोपियाँ अलग है। तो बलराम जी ने ये रासलीला जो है इसी महीने में, चैत्र महीना है ये, आज पूर्णिमा है, चैत्र महीना का पूर्णिमा है, बसंत रास। तो बलराम जी ने आज से शुरू किया, आज से प्रारंभ करेंगे, दो महीना तक रासलीला करेंगे राम घाट में। आप सब लोग गए होंगे राम घाट, जो परिक्रमा की है आप सबको पता है, ब्रजमंडल परिक्रमा में आते हैं, यमुना के उस पार पे है राम घाट। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय राम घाट। राम बलराम, राम यहाँ पे बलराम को बोल रहे, बलराम जी को बता रहे राम। तो बलराम जी वहाँ रासलीला करना चाह रहे थे राम घाट में, वहाँ पे क्या हुआ बोलने से, बलराम जी के सेवा के लिए वरुणी आ गई, वरुण देव के पुत्री, वरुण देव ने भेजा अपने पुत्री को, जाओ बलराम जी की सेवा करो, बलराम जी रासलीला करने वाले हैं, जाओ उनकी सेवा करो। तो जो है वरुण देव जो है अपनी पुत्री को भेजे, वरुणी को भेजे। तो वरुणी जो है उन्होंने अपना रूप बदल दिया, कौन से रूप में आई वो, कुछ लिक्विड जल के रूप में, जल बोल सकते हैं आप, कुछ शहद के रूप में आ गई, शहद के रूप में। तो शहद के रूप में आ गए। तो जब वरुणी प्रवेश की वहाँ, वो प्रवेश करते हुए वो जो है राम घाट जो है बहुत ही सुगंधित हो गया, बहुत सुगंधित। तो बलराम जी ने उस वरुणी को पान किए, बलराम जी ने पान करते ही बलराम जी जो है नशे में नहीं आए, आप बोलने वाले नशे में आ गए, जो साधारण व्यक्ति की तरह बलराम जी नशे में नहीं आए, बलराम जी ट्रांसेंडेंटली इंटॉक्सिकेटेड, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटली इंटॉक्सिकेटेड, आध्यात्मिक दृष्टि से वो जो है अद्भुत उन्मुद हो गए बलराम जी। अब बलराम जी को रोका नहीं गया है, अब रोका नहीं गया है बलराम जी को। हाँ, तो बलराम जी अब रासलीला करना चाह रहे थे, तो उन्होंने किनको आदेश दिया, यमुना को, हे यमुने तुम उधर बह रही हो, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं जो है तुम्हारे जल में रास क्रीड़ा करना चाहता हूँ। देखो बलराम जी ने कैसे आदेश दिए यमुना मैया को, यमुना मैया को आदेश दिए बलराम जी ने। तो यमुना जी आने में हिचकिचा रही थी, मैं नहीं आऊंगी, मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगी। तो बलराम जी बोले अगर तुम नहीं आओगी तो मैं क्या करूंगा, अपने हल से तुम्हें खींच डालूंगा। इसलिए बलराम जी को बोलते हैं नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सल्या, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणी धरा, प्रलंबारे नमस्ते तू त्राईमाम कृष्ण पूर्वचा। इस श्लोक में बलराम जी के सभी लीलाएं वर्णन किया गया। नमस्ते हलग्राम, हे हल धारण करने वाले आपको प्रणाम है। नमस्ते मुसलायुधा, हे मुसल धारण करने वाले आपको भी प्रणाम है। नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, रेवती के कांत, रेवती के पति आपको प्रणाम है। तो बलराम जी अपने हल से जो है क्या कर दिया, यमुना मैया को खींच डाले, खींच डाले, अपने हल से खींच डाले। खींचने वाले थे, जब खींचने वाले थे तो यमुना जी डर गई, डर के मारे फिर जब इधर बह रही थी तो उल्टी बहने लगी बलराम जी के लिए। देखो आप समझ रहे, उल्टी उल्टी दिशा में बहने लगे, तो बलराम जी जो है वहाँ पे रास लीला करने लगे, रास क्रीड़ा अपने गोपियों के साथ राम घाट में। तो आज के दिन में बलराम जी जो है रास क्रीड़ा प्रारंभ किए थे। विस्तार में तो बोलने की इच्छा है, श्लोक भी आपको बताने की इच्छा है, लेकिन क्या करेंगे, समय का अभाव है। तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है बहुत ही सुंदर रूप से, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो आज के दिन बलराम जी ने रास क्रीड़ा किए थे, इसीलिए इस दिन को बलराम रास यात्रा बोलते हैं, बलराम रास यात्रा। तो आज से लेके 2 महीना तक करेंगे, पूरा 2 महीना तक। तो इसीलिए आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। तो इस पवित्र दिन में आइए हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे समय मिलता है तो आचार्य के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ करते हैं, इस श्लोक के ऊपर, इस अमल पुराण श्रीमद् भागवतम। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोलते बोलते द्वादश स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के अंतिम में श्रीमद् भागवतम का गुणगान गाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम कैसे है बोल के सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानम प्रियम यस्मिन् परमहंसायाम् एकम् अमलम् ज्ञानम् परम गीयते तत्र ज्ञानम् वैराग्यम् भक्ति समितम् नैष्कर्यम् आविष्कृतम् तश्रीवान् सुपठाम् विचार पारो भक्त्याम् विमुच्यते नरः। देखिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे श्रीमद् भागवतम कैसे है, ऐसे नहीं हम साधारण आके बैठ गए और हम सुनना प्रारंभ किया, ये कुछ साधारण नहीं है। यहाँ पे बोल रहे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यत वैष्णवानम प्रियम। आप समझ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये कैसे पुराण है, अमल पुराण है, अमल पुराण है, इस बात को ध्यान रख लो। और आगे बोलते हैं वैष्णवानम प्रियम, अमल पुराण तो है साथ साथ किनकी प्रिय है ये, वैष्णवानम प्रियम। अगर हम वैष्णव है तो हमें श्रीमद् भागवतम प्रिय होना ही चाहिए, श्रीमद् भागवतम श्रवण में या बोलने में हमें रुचि होनी चाहिए। यहाँ पे बोल रहे वैष्णवानम प्रियम, अमल पुराणम वैष्णवानम प्रियम, वैष्णव के प्रिय क्यों है ये श्रीमद् भागवतम? आगे बोलते हैं, यस्मिन परमहंसयाम एकम अमल ज्ञानम परम गीयते। यस्मिन गीयते, इसमें बताया गया है परमहंस के बारे में, या भक्तों के बारे में बताया गया है, भगवान के बारे में बताया गया, इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है और वैष्णव के प्राण है, प्रिय है। हाँ, इसलिए क्या करो, तश्रेवान सुपठम विचारण परो भक्त्या विमुच्य न रह। इसलिए इसको क्या करो, तत् श्रीमान, इसको सुनो, श्रीमद् भागवतम को सुनो, स्वपठान, इसको पाठ करो, तो फिर क्या होगा, पठन पाठन और श्रीमान पठन, विचार विचार भी करो, ये तीसरी बात है। हाँ, सुनना है, पढ़ना है और साथ साथ क्या करना है, विचार करना है, आपने आज क्या सुना, कल क्या सुने थे, या कुछ दिन पहले क्या सुने थे, इसको भी विचार करना, ऐसे बताया गया है। श्रवण से भी महत्वपूर्ण मनन है, श्रवण तो अच्छा है, श्रवण करना ही है, श्रवण के बाद और क्या है, मनन, अंग्रेजी में बोलते हैं कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेट। श्रवण से महत्वपूर्ण मनन है और मनन से महत्वपूर्ण निधि ध्यासन, उसको जीवन में उतारना। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप श्रवण है, सेकंड स्टेप है मनन, आप जाके थोड़ा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और तीसरा है निधि ध्यास। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है, इसको जो है सुपठन विचारण श्रीमान, इसको श्रवण करो, विचार करो, और फिर जो है पठन करो, फिर उस करने से क्या होगा, भक्त्या विमुच्यते न रह, फिर जाके हमें जो है भक्ति प्राप्त होगी, हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। देखो कितना महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम, हम रोज तो सुनते हैं, कभी कभार नहीं भी सुनते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम का श्रवण। इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे प्रत्येक दिन हम श्रवण करें, प्रत्येक दिन, एवरी डे विदाउट फेल, ये भी हमारा एक साधना का एक अंग है। इस समय हमें बिजी नहीं होना चाहिए, श्रवण के समय हमें दूसरे काम में बिजी होना नहीं चाहिए, यहाँ पे कथा में आने चाहिए, सुनना चाहिए, तो इसलिए ये श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो है आज का श्लोक आप जो देख रहे थे, अभी तो नहीं है, तो आज का श्लोक यहाँ पे जो है, ये जो है विष्णु दूत बोल रहे हैं, विष्णु दूत, श्लोक एक और श्लोक दो, आने वाले कहीं श्लोक तो विष्णु दूत बोलेंगे, विष्णु दूत आप सुनते आ रहे थे, विष्णु दूत यहाँ पे बहुत ही सुंदर रूप से बोल रहे हैं, विष्णु दूत बहुत ही सुंदर रूप से उनका जो है उनकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं विष्णु दूत। तो ये इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा हम आगे के जो आगे क्या हुआ है, क्यों बोल रहे हैं, उसको हम संक्षेप में बताएंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। विष्णु दूत यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि आपने सुना है अध्याय छः के, हमें स्कंद छः के अध्याय एक में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने मुझे जो है, देखो परीक्षित महाराज यहाँ पे जो है पूरे भागवतम का जो है समराइज कर रहे हैं, यहाँ पे अध्याय एक में आपने सुने थे, इसी स्कंद के, स्कंद छः के अध्याय एक में परीक्षित महाराज बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी को, आपने मुझे, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने मुझे स्कंद दो में निवृत्ति के बारे में बताया है, और स्कंद तीन में आपने मुझे प्रवृत्ति के बारे में बताया है, आप सुन के आए ना ये श्लोक, हाँ पिछले अध्याय में, आपने मुझे स्कंद चार में मन्वंतर अवतार के बारे में बताए है, अभी आप मुझे स्कंद पांच, जो पिछले का स्कंद था, स्कंद पांच और इस छह में जो है, स्कंद छह में आप मुझे जो है नरक के बारे में वर्णन कर रहे हो, नरक के बारे में, नरक के बारे में वर्णन कर रहे हो, लेकिन मैं, ठीक है नरक के बारे में तो आप वर्णन कर रहे हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने तो सुन लिया नरक कैसे है, 28 प्रकार के नरक है, कैसे भोगना पड़े, ये तो सुन लिया, लेकिन आप मुझे ये जो है उपाय बताइए कि लोग जो है इस नरक गामी से कैसे दूर होंगे। हाँ, सभी लोग नरक ही जा रहे हैं, नरक ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे परीक्षित भाई ये प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, अधुनेना महाभागा यथैव नरका नरह, नरका नरह, लोग नरक जा रहे, बहुत लोग, सभी लोग नरक ही जा रहे, तो नरक जाने से कैसे रोका जाए, ये प्रश्न कर रहे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज। वास्तव में यही है। आप देख रहे हो इस संसार में, संसार में अधिकतर लोग नरक गामी बन रहे, बहुत ही कम लोग भगवान के शरण में आते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग 99% लोग नरक गामी है। लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं आप हम समझ भी नहीं पाते हैं, नरक जाने के लिए, नरक गामी के लिए ऐसे कार्य करते हैं। आप सबको पता ही है, अभी अभी हाल ही में मैं थाईलैंड में था, मैं विदेश में गया था प्रचार के लिए, तो हम एक जगह पे थे, बैंकॉक से थोड़ा दूर है, पटाया बोल के आप सुने होंगे, पटाया बोलते हैं वहाँ के लोग, पटाया बोलते हैं, पटाया आपने सुने होंगे, ये थाईलैंड में है। तो हम वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, हम आपको बता रहे लोग कैसे नरक गामी बनते हैं, कैसे लोग फंसे हैं। तो वहाँ पे पटाया में हम प्रचार कर रहे थे, तो क्या हुआ बोलने से, वहाँ पे बहुत विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत विदेशी आते हैं, बहुत, क्या करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए आते हैं, हाँ, देश विदेश से लोग। तो वहाँ पे पहुँच गए यूरोप से एक परिवार, यूरोप से पति पत्नी और उनके बेटा, 2 साल के बेटा, वहाँ पे पहुँच गए उस पटाया में, और द्वीप है, एक आइलैंड है। तो ये क्या हुआ बोलने से, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग भी वहीं पे थे उस समय, तो सिर्फ पत्नी ही घूम रही थी, हाँ, पत्नी कभी खाने के लिए जाती है, कभी नहाने के लिए जाती है, कभी इस पार्क में जाती है तो कभी उस पार्क में, सिर्फ पत्नी घूम रही थी तो पति नहीं घूम पा रहा था, पति तो सिर्फ बच्चा के साथ ही बिजी था, वो 2 साल का बच्चा को देख रहा था, पत्नी ही घूम रही थी, बहुत वही लाभ उठा रही थी। तो पति जो है बहुत नाराज हो गया, देखो देखो हम एक ही साथ आए घूमने के लिए, लेकिन ये अकेली घूम रही है, इसको तो मैं दिखाता हूँ, ऐसे सोचा उसने। तो फिर इसने क्या किया, जब पत्नी बाहर थी, जब घूम रही थी, उस बालक को, 2 साल का बालक को उसने पैर में जो पत्थर बांध दिया, पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो आपको पता हो भी क्या हो गया वो बालक, फिर ये घूमने लगा, पति अलग पत्नी अलग, घूम फिर के जब जा रहे थे, पति जा रहा था विदेश, लौट रहा था, बच्चा तो मर गया, लौट रहा था, तो बैंकॉक के एयरपोर्ट में ये पकड़ा गया। तो बोलने का उद्देश्य ये है, लोग देखो कैसे नरक गामी बन रहे, कैसे नरक गामी बन रहे लोग, हमारे सामने हुआ ये, ऐसे नरक गामी बन रहे लोग। इसीलिए परीक्षित महाराज बोल रहे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे इसका जो उपाय बताइए, लोग नरक गामी से कैसे बचेंगे, सभी लोग नरक गामी बन रहे। तो ये प्रश्न किया, विशेषकर ये प्रश्न किया, तब जाके अजामिल का जो है प्रसंग प्रारंभ हो गया। आप सबने सुना है, मैं नहीं सुनाऊंगा, मुझे पता है सभी भक्ता ने आपको ये बार बार श्रवण करा चुके हैं ये प्रसंग। इस प्रश्न के आधार पे ये प्रसंग प्रारंभ हुआ। यहाँ पे जो है यमदूत और विष्णु दूत के बीच में अजामिल है, आप दर्शन कीजिए, यहाँ पे सोचिए, एक पक्ष में जो है विष्णु दूत है और दूसरे पक्ष में यमदूत है, और बीच में जो है अजामिल है। कभी जो है उस अजामिल को जो है विष्णु दूत ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो नहीं 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 हम ले जाएंगे, यमदूत बोले हम ले जाएंगे, टक वार चल रहा है यहाँ पे, कौन ले जाएगा अजामिल को, बीच में रखे देखो। तो उस समय विष्णु दूत बोलते हैं, अगर ये अजामिल का तुम्हारा अधिकार है तो प्रमाण बताओ, कैसे ये अजामिल, क्या अधिकार है। विष्णु दूत बोले यमदूत को, तुम्हारा क्या अधिकार है अजामिल को ले जाना, क्या प्रमाण है, कुछ धर्म शास्त्र से बताओ। यहाँ पे बोल, अगर तुम यमराज के दूत हो, युयम वे धर्म राजस्य यदि निर्देश कारणी, अगर तुम यमराज के जो है दूत है तो तुम्हारा प्रमाण क्या है, किस प्रमाण से तुम अजामिल को जो है नरक ले जाना चाहते हो, है ना, आपने सुना है ये। तो उस समय यमदूत बहुत बहुत चीज बोलते हैं, भगवान ने शास्त्र दिया है, लोग जो है शास्त्र का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए जो है जो लोग शास्त्र का पालन नहीं करते हैं उनको जो है नरक ले जाया जाता है, उनके गलत कार्य के लिए बहुत लोग साक्षी होते हैं। ये भी एक श्लोक दिया है, धरती वायु पृथ्वी आकाश ये सब साक्षी होते हैं। तो इसलिए हम जो है इस अजामिल को हम नरक ले जाने के लिए आए, इसने जो है बहुत गलत कार्य किया है, इसने बहुत गलत कार्य किया, हर समय गलत कार्य किया है, इसलिए हमारा अधिकार है, तो जब ऐसे बोले तो फिर जब विष्णु दूतों ने ये सुना और फिर यमदूत ने कहानी भी बताए इसने कैसे गलत कार्य किया, पूरा ये कहानी भी बताए कैसे इसने गलत कार्य किया, उस बात को जब सुना विष्णु दूतों ने तो आज के श्लोक में विष्णु दूत बोल रहे हैं। अब आज के श्लोक में इस दो श्लोक में अभी हरिनाम के बारे में नहीं बोल रहे, पहले छह श्लोक में वो धर्म के जो है धर्म के बारे में बोले, धर्म के नीति के बारे में बोल रहे हैं। श्लोक नंबर एक से लेकर छह तक बोलेंगे, फिर सात से लेकर आगे तक हरिनाम के बारे में बोल रहेंगे। तो ये आज के श्लोक में विष्णु दूत बोल रहे हैं, ठीक है तुमने तो बोल दिया अजामिल ने जो है गलत कार्य किया है, लेकिन सुनो ध्यान से सुनो, आज के श्लोक में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। हाँ यहाँ पे बोल रहे विष्णु दूतों ने कहा हाय हाय, यह कितना दुख है कि ऐसे सभा में जहाँ धर्म का पालन होता है वहाँ जो है अधर्म का जो है शासन हो रहा है, ये यमदूत जो है यहाँ पे अधर्म चला रहे। तो ये विष्णु दूत बोल रहे, देखिए विष्णु दूत अजामिल के पक्ष में रह के बोल रहे, विष्णु दूत अजामिल के पक्ष में है। आपको पता नहीं है इस अजामिल ने कितना श्रेष्ठ काम किया है, श्रेष्ठ कार्य किया है। इसने क्या किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। अजामिल ने भगवान का नाम लिया है। संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा, आगे बोलेंगे ये श्लोक। ये हरिनाम तो ये चार प्रकार से लेने से भी लाभ होता है। सांकेत्यम परिहास्यम, संकेत करते हुए अजामिल ने जैसे किया सांकेत, वो भगवान का नाम तो नहीं ले रहा था, संकेत करते हुए नारायण बोल रहा था। परिहास्यम वा हंसते हुए भी हरिनाम लेते हैं, स्तोवम गाते हुए, हेलनम हेला करते हुए, ऐसे भी हरिनाम का कोई भी नाम लेता है तो उसको लाभ। इसीलिए अजामिल जो है धर्म का कार्य कर रहा है। हे यमदूत सुनो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम्हारे जो है गुरुजी से पता लगाओ, यमराज से पता लगा लो। अगर कोई ये हरिनाम जो है संकेत्यम संकेत करते हुए भी हरिनाम लेता है तो वो जो है उसको जो है यमदूत का जो है अधिकार नहीं है, यमदूत का अधिकार है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो है धर्म का बात हो रहा है, धर्म धर्म की बात विष्णुदूत बोल रहे। देखिए हरिनाम अनजान में लिया इसने हरिनाम, तो उसको जो है देखो विष्णुदूत उसको स्पर्श करने नहीं दे रहे, यमदूत को स्पर्श करने नहीं दे रहे, अनजान में लेने से इतना लाभ है। तो आप जैसे भक्त जो दिन रात भगवान को अर्थ के साथ पुकारते हैं तो फिर भगवान क्या करेंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। आप दिन रात बोलते रहते हैं हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी मन्ये कुता। ऐसे जो भक्त पुकारते हैं हे राधे आप कहाँ हो, हे राधे, हरे कृष्ण महामंत्र भी वही है, हरे कृष्ण हरे राम, हे राधे हे कृष्ण आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। जो भक्त ऐसे पुकारेंगे तो भगवान फिर उनके लिए क्या करेंगे, आप सोचिए। अजामिल ने जो है संकेत करते हुए किया तो उसको स्पर्श करने नहीं दे रहे यहाँ पे विष्णु दूत यमदूत को, लेकिन जो भक्त लोग जो ऐसे जो हृदय से पुकारते हैं प्रेम से पुकारते हैं तो फिर उनके लिए फिर क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं उनके लिए फिर क्या होगा बोल के। बस इतना ही, हमें इसको निरंतर करना है, निरंतर आजीवन तक करना है, अपराध रहित करना है, फिर तो बेड़ा पार ही है, बेड़ा पार है ना। तो इसलिए यहाँ पे विष्णु दूत जो है धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे थे यहाँ पे बोल रहे हैं। लेकिन क्या है बोलने से, आजकल प्रभुपाद बोल रहे कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले धार्मिक लोगों को बंदी बनाकर पुलिस तथा न्याय लोगों द्वारा सजाया जाता है, कभी कभार ऐसे भी होता है। जैसे यहाँ पे यमदूत आ गए जो हरिनाम लेने वाले को पकड़ने के लिए अजामिल को, लेकिन प्रभुपाद बोले ऐसे ही होता है कभी कभार समाज में भी, हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को भी ऐसे ही जो है कैद किया जाता है। तो मैं सोचा था ये यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, समय नहीं है। चैतन्य भागवत में बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मैं कुछ श्लोक पढ़ने के लिए सोचा था लेकिन समय का अभाव है, वृंदावन 9 बजे खत्म करना पड़ता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो ऐसे ही बताएंगे हम। इसी प्रसंग में जैसे यहाँ पे धर्म की बात चल रही है, अजामिल ने उसने धर्म का कार्य किया, भगवान का नाम लिया, उसी तरह प्रभुपाद बोल रहे तात्पर्य में कि हमारे भक्तों को भी कभी कभार ऐसे ही जो हरिनाम लेते हैं, प्रचार करते हैं, उनको भी कभी कभार कैद किया जाता है। तो यहाँ पे चैतन्य भागवत में श्लोक से पढ़ते तो अच्छा होता, बहुत ही सुंदर है। हरिदास ठाकुर का प्रसंग आया है। हाँ, हरिदास ठाकुर जब हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन कर रहे थे, मग्न थे, गंगा स्नान करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, काजी ने जाके शिकायत कर दिया नवाब हुसैन को, देखो ये हरिदास भगवान का नाम ले रहे। देखो जहाँ पे धर्म का काम होता है वहां पे शिकायत होता है, वहां को उनको बाधा पहुंचाया जाता है, हरिदास को भी बहुत बाधा, फिर हरिदास की शिकायत हो गई। तो फिर उस समय हरिदास को जो है पकड़ के जेल में डाल दिया गया। फिर हरिदास जेल में भी क्या करने लगे, प्रचार करने लगे, भगवान के भक्त जेल में भी भगवान का नाम लेने लगे, जेल में भी प्रचार करने लगे। उस समय अंतिम में फिर क्या हो गया, एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं, एकाद श्लोक तो। जब हरिदास जेल में भी भगवान का नाम ले रहे थे तो फिर काजी को रोका नहीं गया, तो काजी ने बोल दिया जाओ क्या करो। काजी बोले बाईश बजारे निद्या मारे प्राणालय तार की छू विचार ना करी। काजी ने क्या बोला, काजी बोले बाईश बजारे, इसको जाओ ये हरिदास को क्या करो, 22 बाजार में इसको पिटाई करो, ऐसे पिटाई करो। हाँ, यहाँ पे बोल रहे प्राण लय तारक किछु विचार ना करी, उसका प्राण लो, प्राण। देख रहे हो भक्ति में कितना कष्ट आता है, बाधा आता है, बाधा तो आती है, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत ही कष्ट होने से हम डगमगा जाते हैं। हाँ, अब ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे। लेकिन भक्ति में यहाँ पे प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण दिया गया है, इसी प्रसंग में प्रहलाद महाराज को भी बहुत बाधा आई थी, हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त किसको बाधा नहीं आया, सबको बाधा आती है। तो हरिदास ठाकुर को ऐसे पिटाई किए, मरने तक उनको पिटाई किया गया, फिर भी हरिदास ठाकुर ने क्या नहीं छोड़ा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। ये कली का प्रभाव है, कली ने भी संकल्प लिया है, मैं जो है कहीं पे भी धर्म का जो है अनुष्ठान होने नहीं दूंगा, कली ने संकल्प लिया है ये। इसीलिए यहाँ पे आज के श्लोक में भी अजामिल भगवान का नाम तो ले रहे, विष्णुदूत बोल रहे अजामिल भगवान का नाम ले, इसलिए तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाय हाय, जहाँ पे धर्म का काम हो रहा है तुम उनको पकड़ने के लिए आयो, धिक्कार है तुम्हारा, धिक्कार है। ऐसे बोल के विष्णुदूत बोल रहे और प्रभुपाद इसी बात को ही बता रहे हैं। निश्चित रूप से भक्तों को बाधा तो आता ही है, बाधा आती है, फिर भी भक्त लोग उस बाधा को भगवान की कृपा मानते हैं, कुंती महारानी प्रहलाद महाराज विशेष कृपा मान के भक्ति में डगमगाते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते, उस बाधा जो उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करता है। श्रील प्रभुपाद के भी उदाहरण है जलदूत में भी। हाँ, तो इसलिए आज के श्लोक में यही चर्चा किया गया है, भगवान जहाँ पे धर्म का जो है अनुष्ठान है, प्रचार है, वहाँ पे बाधा है, फिर भी भक्त लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक दो मिनट में मैं, क्योंकि धर्मात्मा प्रभु मुझे बोले थे आचार्य के बारे में कुछ बताए, सुबह बोले थे, तो बस एक दो मिनट में मैं बता के ख़त्म करूँगा। तो आज जो है जैसे हम बताए हैं रास पूर्णिमा के बारे में तो चर्चा हो गया है, श्यामानंद प्रभु का भी आविर्भाव दिवस है। श्यामानंद प्रभु आप सभी लोग जानते हैं, श्यामानंद प्रभु जो है ये जो है कृष्ण मंडल, और इनकी माताजी के नाम रहा दूरिका देवी, इनके पुत्र रहे श्यामानंद प्रभु, और बहादुरपुर उत्काल में इनका जन्म हुआ है। और श्यामानंद प्रभु इनका जो है बचपन का नाम दुखी था, दुखी क्योंकि ये जो है इनके पिता माता कृष्ण मंडल के बहुत संतान हुए, संतान होते ही शरीर छोड़ जाते थे, तो इसलिए अंतिम में यही रह गए थे, तो इसलिए इनका नाम क्या दिया, दुखी। जब इन्होंने दीक्षा लिए हृदय चैतन्य से, जो गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदय चैतन्य, उन्होंने दीक्षा लिए तो फिर इनका नाम क्या हो गया, दुखी कृष्ण। दुखी कृष्ण, तुम जो है दुखी कृष्ण हो, दुखी कृष्ण दास। तो फिर ऐसे करते करते श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य के प्रभु के ही अनुमति से वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन धाम आके जीव गोस्वामी के अध्यक्ष में रह के शिक्षा लेने लगे। श्यामानंद, श्रीनिवास और नरोत्तम, ये तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य हैं और किसी से शिक्षा ले रहे। देखो, हम अलग अलग गुरु के शिष्य हो सकते हैं लेकिन हम शिक्षा कहीं पर भी ले सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट के शिष्य थे, श्यामानंद जो है हृदय चैतन्य के शिष्य थे। तो ये वहाँ शिक्षा लेने लगे जीव गोस्वामी से, और जीव गोस्वामी ने इनको विशेष सेवा दिया श्यामानंद प्रभु को। तुम्हारी सेवा क्या है, सेवा कुंज में क्या करना है, झाड़ू लगाना है, झाड़ू। हम सोचते हैं झाड़ू मंदिर में झाड़ू पोछा करने, तो हमारी सेवा नहीं है। हमारी सेवा क्या होना चाहिए, कॉलेज प्रीचिंग, पुजारी सेवा, कॉलेज प्रीचिंग, ऐसे हम मानते हैं, सोचते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हमारे संस्था में बाथरूम साफ करना भी प्रचार है। प्रभा ऐसे बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में बाथरूम साफ करना, मंदिर को पोछा लगाना भी क्या है, प्रचार है। अगर हम मंदिर को पोछा नहीं लगाएंगे तो इतने यात्री आते हैं, मंदिर साफ सुथरा नहीं होगा, तो प्रचार में तो हेल्प कर ही रहे मंदिर पोछा लगाने वाले भी। ऐसे नहीं, इसीलिए श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाने लगे। ऐसे बताया गया, उन्होंने 11 साल जब झाड़ू लगाया सेवा कुंज में भगवान का कीर्तन नाम लेते हुए, तो एक दिन उनको वहां पे क्या प्राप्त हुआ, नुपुर। और नुपुर को दर्शन करते ही, स्पर्श करते हुए समझ गए ये नुपुर किसका है। तो उस सेवा कुंज में राधा कृष्ण की लीला होती थी, रास लीला है, तो राधा रानी की नुपुर जो है वहां पे छूट गई थी। तो राधा रानी को पता चला नुपुर छूट गया, जाओ जाओ लेके आओ नुपुर लेके आओ। तो सखिया आ गई नुपुर लेने के लिए, तो उस समय विशाखा बोलने लगी उस नुपुर को वापस दो, वो हमारी जो है मित्र की जो है उनका नुपुर है, वापस करो। तो कृष्ण भक्त तो चतुर होते ही है, श्यामानंद प्रभु बोलने लगे ठीक है मैं वापस दूंगा, लेकिन जिनका है उनको भेज दीजिए, आपको नहीं दूंगा। जो मालिक, उनको पता चल गया किनका है, जो मालिक है उनको भेजिए। फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, ऐसे बताया गया 1.5 महीना प्रयास किया, उन्होंने नहीं दिए। फिर जाके राधा रानी को लेके आए, तो राधा रानी राधा कृष्ण के दर्शन के लिए तो इस शरीर में नहीं हो पाया, तो उन्होंने श्यामानंद के शरीर को राधा कुंड के जल स्पर्श करके शरीर बदल दिया उन्होंने, गोपी का शरीर उन्होंने प्राप्त किया। उस समय श्यामानंद प्रभु ने, दुखी कृष्ण थे अभी तक, तो उन्होंने राधा रानी का दर्शन किया। देखो, झाड़ू लगाने के बाद राधा रानी का दर्शन किया, आप समझ रहे, झाड़ू लगाने से भी हम राधा रानी का दर्शन कर सकते हैं। इतना ही दर्शन ही नहीं किया उन्होंने, राधा रानी ने क्या कर दी, उनके शरीर को स्पर्श किया और उनके यहाँ पे ललाट में क्या कर दिया, तिलक डाल दी, तिलक। आज से ये तुम्हारा ये तिलक जो है हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए आप देखते हो जो श्यामानंद के संप्रदाय के लोग तिलक है थोड़ा अलग है, और राधा रानी के विशेष उसी नुपुर से उन्होंने तिलक लगा दी थी, तो विशेष रहा ये श्यामानंद प्रभु के ऊपर। तो ऐसे ये उनकी विशेष लीला है, ये एक लीला, लीला तो अनेक है, ये विशेष लीला है। फिर राधा रानी अदृश्य हुई गोपियों के साथ, अपने नुपुर लेके, अब श्यामानंद प्रभु रोका नहीं गया, अब कृष्ण राधा कृष्ण के जो है चिंतन में उन्मत्त हो गए, पहले से थे ही, अभी तो और उनको रोका नहीं गया, और रोका नहीं गया। फिर उनके गुरुजी भी थोड़ा नाराज हो गए, गुरुजी हृदय चैतन्य, तुम्हारे तिलक को किसने बदल दिया। तो इसलिए तिलक बदलने से पहले ध्यान रखो, जो तिलक बदलते हैं पहले गुरु से अनुमति लो, अपने मर्जी से मत कीजिए। हम देखते हैं आजकल कई लोग बदल देते हैं अपने इच्छा से। यहाँ पे देखो कितनी गंभीर की बात है, हृदय चैतन्य बोले श्यामानंद तुम्हें किसने बोला ये तिलक ऐसे बदलने के लिए। तो प्रभु मैंने तो नहीं किया, आप मिटा के देखिए, जितना मिटाते हैं उतना ही क्या होता है, तेज होता जाता है। फिर अंतिम में जब हृदय चैतन्य बहुत नाराज हुए तो राधा रानी को सपने में आना पड़ा, हृदय चैतन्य ये तो मैंने स्वयं किया है। तो फिर हृदय चैतन्य क्षमा मांगे राधा रानी से, तो तब से जो है श्यामानंद प्रभु बहुत ही प्रसिद्ध हो गए श्यामानंद। और जीव गोस्वामी ने उनका नाम बदल दिए थे, आपका नाम दुखी कृष्ण नहीं होगा, आपका नाम श्यामानंद दास, श्यामानंद दास बोल के नाम बदल दिए थे। फिर इनको प्रचार में भेजा गया, तो श्यामानंद प्रभु ने विशेष रूप से उड़ीसा में प्रचार किया। उड़ीसा में नरोत्तमदास ठाकुर ने बंगाल, श्रीनिवास आचार्य मणिपुर साइड में प्रचार किए। तो श्यामानंद प्रभु ने उड़ीसा में प्रचार किए। इनके मुख्य शिष्य रहे रसिकानंद आचार्य, रेमुना में इनका समाधि है रसिकाचार्य के, हम लोग वहाँ जाते रहते हैं। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु, हाँ श्यामानंद प्रभु से हम सीख सकते हैं कैसे हम नम्र सेवा करने के बाद भी, हम नम्र सेवा तो बहुत अच्छा है, हम भगवान के जो है भगवान को दर्शन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक मिनट में बंसी वदन प्रभु के बारे में, एक मिनट बंसी वदन प्रभु की लीला भी बहुत विशेष है। बंसी वदन ये कृष्ण लीला में क्या थे, भगवान के बंसी थे, बंसी बंसी वदन, इसलिए उनको बंसी वदन बोलते हैं। इन्होंने जो है इनका पिता, इनके पिता माता रहे माधव दास और श्रीमती चंद्रकला देवी। जहाँ पे इनके घर पे चैतन्य महाप्रभु रोके थे उड़ीसा में, जब माधव दास के घर पे चैतन्य महाप्रभु रोके थे, उसी समय ही बंसी वदन का, बंसी उस समय बंसी था उनका नाम, बंसी का जन्म हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको विशेष आशीर्वाद दिए थे बंसी वदन को। और ये बंसी वदन प्रभु जो है, विशेष करके ये जो है विष्णु प्रिया के भक्त थे, विष्णु प्रिया जो चैतन्य महाप्रभु की जो धर्म पत्नी थी विष्णु प्रिया, तो विष्णु प्रिया के सेवा में थे ये। जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल से अप्रकट हो गए तो विष्णु प्रिया और बंसी वदन प्रभु बहुत दुखी हो गए। अब चैतन्य महाप्रभु तो चले गए, हम भी नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे, हम भी इस संसार में नहीं रहेंगे, भगवान के बिना इस संसार में रहना तो उनके बिना जीना क्या क्या लाभ है ना। तो उन्होंने ऐसे निर्णय लिया, हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, शरीर छोड़ देंगे, बंसी वदन प्रभु और विष्णु प्रिया ने। उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको प्रचार प्रसार करना है, आप खाइए पिए, मेरा स्मरण कीजिए, मेरा चिंतन कीजिए। तो उस समय वहाँ पे जो है एक नीम का, नीम के पेड़ से एक विग्रह बनाया गया, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह, बंसी वदन प्रभु और विष्णु प्रिया ने मिल के विग्रह बनाए। और विग्रह बन गए, कौन बन गए, धामेश्वर महाप्रभु जो नवद्वीप में है, धामेश्वर महाप्रभु आप सबने दर्शन किए होंगे। तो उन विग्रह को विष्णु प्रिया ने, ऐसे बताया गया है, 80-90 साल सेवा की थी, 80-90 साल विष्णु प्रिया ने पूजा की। तो विष्णु प्रिया जब जाने के बाद उन विग्रह को बंसी वदन प्रभु ने सेवा करने लगे, बंसी वदन प्रभु। तो ये बंसी वदन प्रभु की भी विशेष लीला है, विष्णु प्रिया के पार्षद थे और इन्होंने धामेश्वर महाप्रभु के सेवा किए। और ये बहुत बड़े कवि भी थे, कवि, तो इन्होंने बहुत कविताएं भी लिखी है, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के बारे में गुणगान किए हैं। तो ऐसे विशेष दिन में श्यामानंद प्रभु, बंसी वदन प्रभु, बलराम रास पूर्णिमा, ऐसे विशेष दिन पे हम सबको यहाँ पे अवसर मिला है श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने के लिए। कम समय में मैंने कुछ प्रयास किया है, तो कुछ गलती त्रुटि हो गया तो क्षमा कर दीजिए, अगर कुछ बोलना है तो आप व्यक्तिगत रूप में आके बोल सकते हैं, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय 10 मिनट हुआ है, क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्तवृंद की, नेताय गौर प्रेमानंदे।